الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سلسلة ہے آسان درس قرآن آج سورة البقرة کی آیت نمبر 232 سے قرآن مجید کا درس سنیں گے ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ آپس میں وہ شریعت کے موافق رضا مند ہو جائیں یہ نصیحت دی جاتی ہے اسے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ کام ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یہ آیت مبارکہ کسی متعلقہ عورت کے جو سرپرست ہیں یہ ان کے حوالے سے ہے ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جب طلاق ہو جاتی ہے اور طلاق کے بعد عدت بھی گزر جاتی ہے لیکن اس کے بعد پھر میاں بیوی کو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے جو طلاق کا فیصلہ کیا تھا وہ غلط کیا تھا اور ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ دوبارہ نکاح کر لے کیونکہ جب طلاق دینی ہوتی ہے اس وقت تو شوہر کو 100% قصور بیوی کا نظر آتا ہے اور بیوی کو 100% شوہر ہی ظالم لگ رہا ہوتا ہے اس لیے وہ طلاق لینے پہ راضی ہوتی ہے یا طلاق دینے پہ راضی ہوتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو اب ایک صورت تو رجوع کی وہ تھی جو پہلے گزر چکی کہ طلاق رجعی دی ہے تو شوہر کا صرف بول دینا کہ میں نے بیوی کو واپس اپنے نکاح میں لیا اتنا کافی ہے لیکن بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاق ہوئی عدت بھی گزر گئی اب بیوی اپنے گھر میں ہے شوہر اپنے گھر میں ہے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب ان کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ غلط ہو گیا اور شوہر سمجھتا ہے کہ میں کسی اور عورت کی تلاش میں نکلوں گا شادی کے لیے تو اس سے ورس تو ہو سکتا ہے اس سے بری صورتحال تو پیش آ سکتی ہے یہ والی صورت پھر بھی نہیں ملے گی بیوی کو بھی یہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہی صحیح ہے جیسا بھی ہے تو اب کیا ہے کہ اب وہ آپس میں چاہتے ہیں کہ اب وہ نکاح کر لیں عدت گزر گئی اب چونکہ نئے سرے سے نکاح کر کے ہی وہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں اور یہ صورت وہی ہے کہ جس میں تین طلاقیں نہ ہوئی ہوں کیونکہ تین طلاقوں کا مسئلہ گزر چکا کہ تین طلاقیں ہو گئیں تو اب وہ پھر پورا جو اس کا سلسلہ پہلے بیان کیا وہ ہے تو یہ اس صورت میں کہ جب ایک یا دو طلاقیں دی تھیں طلاق بائن دی تھی عدت گزر گئی تو یہ اس صورت میں تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب ایسی جگہ پہ ہم بھی جو دیکھتے ہیں اور یہ ہمیشہ سے ایک فطری سی چیز چلتی آ رہی ہے کہ بعض اوقات لڑکی مان جاتی ہے لڑکے کے گھر والے نہیں مانتے ہیں وہ بولتے ہیں نہیں اس لڑکے نے اس نے ہماری بیٹی کو تنگ کیا ہم پہ ظلم کیا اب اس کے پاس نہیں بھیجنا ہم کنویں میں دھکا دے دیں گے لیکن دوبارہ اس سے نکاح نہیں کرنے دیں گے تو یہ بہت جگہ پہ ایسا ہوتا ہے تو گھر کے جو سرپرست ہیں وہ اس کے اوپر آ کے جو ہے وہ راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں تو یہاں پر ان سرپرستوں کو سمجھایا گیا ہے فرمایا کہ اگر ان میاں بیوی کو جو پہلے میاں بیوی تھے اب تو اجنبی ہو گئے ان کو اب اگر سمجھ آ جائے پوری طرح اور یہ باہمی رضامند ہوں کہ ہم دوبارہ نکاح کر لیں اور دوبارہ ہم زندگی گزاریں تو جو گھر کے سرپرست ہیں ان کو چاہیے کہ رکاوٹ نہ بنے روکے نہیں اور وہ عورتوں کو اجازت دیں کہ وہ اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کر لیں تو فرمایا کہ یہ نصیحت کی جاتی ہے تم میں سے اسے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ صاف ستھرا کام ہے تو اب یہ ہے کہ बहुत से मौके महाल होते हैं कि जहां देखकर ही फैसला करना होता है। सरपरस्त बाज़ औक़ात सही भी रोक रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं होती कि गलत ही रोक रहे हैं, बाज़ औक़ात सही भी रोक रहे होते हैं, लेकिन जहां पर सिर्फ एक जिद की वजह से रोक रहे हो तो वहां पर ये ममानत है। वहां ये है कि ये ना करो। अगर किसी वजह से साबिक ज़माने में गलतियां हो गई और अब शौहर भी तलाफी करने को तैयार है, बीवी भी अब सुधरने को तैयार है, तो अब इनको दोबारा जो है वो करीब आने दो, दोबारा निकाह कर लेने दो। और फरमाया कि ये ज़्यादा पाकीज़ा है, क्या मतलब? क्योंकि होता ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान बाज़ औक़ात ऐसी मोहब्बत कायम हो जाती है कि जब तलाक हो रही होती है तब तो यही लगता है कि दुनिया में मुझे इससे बढ़ के नफरत ही किसी से नहीं। बीवी शौहर को ये कह रही होती है, शौहर बीवी को ये कह रहा होता है। लेकिन जब तलाक हो जाती है और इद्दत गुजर जाती है, अब उसके बाद वो जो हर जगह बुराइयाँ ही नज़र आ रही थी ना, अब वहाँ पर खूबियाँ नज़र आना शुरू हो जाती। नहीं यार, ये आदत तो अच्छी थी, हाँ ये तो खूबी थी उसके अंदर, हाँ ये बात तो बड़ी शानदार थी, यह गलती हो गई मुझसे, तो फिर बाद में जो है ना वो साइकिल कुछ और ही घूमना शुरू हो जाता है। तो अब होता ये है कि अब वो जो पुरानी मोहब्बत है अब वो दोबारा ताज़ा हो गई, उसने उधर शादी कर ली, उसने उधर शादी कर ली, तो कोई बईद नहीं है कि खुदा ना खास्ता ये फिर कोई गलत रास्ता भी इख्तियार कर ले। तो उस एतबार से फरमाया कि तुम्हारे लिए पाकीज़ा यही है, ज़्यादा सुथरा यही है कि अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझदारी के साथ इनको अपना मामला समझ आ गया, सुधारना चाहते हैं, तो फिर जो लड़की के सरपरस्त हैं वो उसे मना ना करें, रोके नहीं। तो ये बात यह है कि आयत मुबारका में इसको समझा दिया गया, उसकी तफसील भी मैंने अर्ज़ कर दी, लेकिन यह है कि इस आयत पे अमल करने के लिए थोड़ा सा अपनी, जिसे कहते हैं ना, ज़ाहरी गैरत और ज़ाहरी अनानियत जो है और स्टेटस जो है उसको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ता है, तब इसके ऊपर अमल हो सकता है। इसके बाद इरशाद फरमाया, वल वालिदात युर्दिना औलादहुन्न हौलैन कामिलैन लिमन अराद अन युतिम्मर रदाअ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے۔ किसी जान पर उतना ही बोझ रखा जाएगा जितनी उसकी ताकत हो। ये है बच्चों को दूध पिलाने के शरई अहकाम। शरई हुक्म ये है कि 2 साल है ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत बच्चे को दूध पिलाने की। 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाया जाए, ये है मैक्सिमम मुद्दत है। 2 साल के बाद बच्चे को दूध पिलाना जायज़ नहीं होता। तो बच्चा जब कमरी साल के एतबार से 2 साल का हो जाए तो उसके बाद उसे दूध पिलाना जायज़ नहीं है। लेकिन ये हुक्म है कि 2.5 साल तक अगर किसी औरत ने किसी बच्चे को दूध पिला दिया, बच्चे की उम्र 2.5 साल होने तक अगर किसी ने किसी बच्चे को दूध पिला दिया, तो जो हुर्मत रदाअत है, जो दूध का रिश्ता है, वो कायम हो जाएगा। 2 साल के बाद अगरचे गुनाह है, लेकिन अगर किसी औरत ने पिला दिया तो दूध का रिश्ता कायम हो जाएगा। ये उसके दूध की माँ, रदाई माँ जैसे कहते वो बन जाएगी। तो फरमाया कि 2 साल है ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहे। उसके बाद फरमाया कि बच्चों को दूध पिलाने वालियों का नानफका और उनका लिबास, इसकी जिम्मेदारी है बाप के ऊपर, बच्चे के बाप पर। जो माँ होती है, जो बीवी होती है, तो बीवी का तो नानफका वगैरह पहले शौहर के ऊपर है। यहाँ पर वो औरतें कि जो उस वक्त शौहर की ज़ौजियत में नहीं है, यानी बच्चे की माँ है तो वो जो है वो तलाक हो चुकी है और वो निकाह से बाहर, इद्दत गुजर चुकी है, या ये है कि इससे मुराद अजनबी औरतें हैं कि किसी दूसरी औरत से दूध पिलवाया तो उसके अखराजात वगैरह देने होंगे। तो फरमाया कि इसमें ये नहीं है कि हद से ज़्यादा उस पर बोझ डाल दिया जाए बाप के ऊपर, जितना ड्यू राइट बनता है उतना दिया जाएगा। इसके बाद फरमाया, ला तुदार वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुल लहू बिवलदिही वअलल वारिस मिस्लु ज़ालिक फइन अरादा फिसालन अन तरादिम मिन्हुमा वतशावुरिन फला जुनाहा अलैहिमा। माँ को उसकी औलाद की वजह से तकलीफ ना दी जाए और ना बाप को उसकी औलाद की वजह से तकलीफ दी जाए, और जो बाप का कायम मकाम है उस पर भी ऐसा ही हुक्म है। फिर अगर माँ बाप दोनों आपस की रजामंदी और मशवरे से دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں۔ یہ حکم بیان کیا کہ بچے کی وجہ سے نہ تو ماں کو تکلیف دی جائے نہ باپ کو۔ اس کی صورت کیا ہے؟ صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جس صورت میں بچے کو دودھ پلانا ماں پر ضروری نہیں، اس صورت میں ماں کو مجبور کیا جائے کہ دودھ پلائے، اور یا یہ ہے کہ جو دودھ پلانے والی ہے اس کو معاوضہ زیادہ ہی دلوایا جائے باپ سے، کہ باپ اسی سے دودھ پلائے اور بہر صورت اس کو معاوضہ زیادہ دے۔ تو فرمایا کہ ماں اور باپ دونوں کو اس بچے کے حوالے سے کسی تکلیف میں مبتلا نہ کیا جائے، اور فرمایا کہ جو باپ کے قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم ہے۔ یعنی یہ جو نان نفقہ اخراجات بیان کیے ہیں، جیسے باپ پر ہیں، اگر باپ نہیں ہے تو باپ کے بعد دادا کی ذمہ داری آ جاتی ہے، تو پھر دادا کے اوپر بھی یہی ذمہ داری لاگو ہوگی۔ اور فرمایا کہ اگر ماں باپ دونوں رضامندی سے دودھ چھڑوانا چاہیں تو وہ چھڑوا سکتے ہیں، 2 سال کی عمر سے پہلے بھی اگر دودھ چھڑوانا چاہیں، 1 سال کے بعد بھی دودھ چھڑوانا چاہیں تو چھڑوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم چاہو کہ دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں، جبکہ جو معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا ہو وہ بھلائی کے ساتھ ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے صورت کہ اگر بچے کی ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانا ہے تو فرمایا کہ اس کی بھی اجازت ہے۔ ہمارے زمانے میں تو ایسا کم ہوتا ہے، یا ہمارے ملک میں شاید ایسا کم ہوتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے باقاعدہ دایا مقرر کی جاتی تھی۔ جیسے خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو دودھ پلایا تھا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پلایا تھا، اور اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ بچے جو ہے وہ اس طرح خواتین کے حوالے کیے جاتے، تو وہ ساتھ لے جاتی، بچوں کو دودھ پلاتی، اپنے علاقے میں وہ پرورش کرتی، تو یہ اس زمانے میں بہت رواج تھا۔ اور ہمارے زمانے میں اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ کسی علاقے میں ہو بھی، اور نہ بھی ہو تو فی نفسی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی اور سے دودھ پلوانا ہے تو اسے دودھ پلوایا جا سکتا ہے، اسے اس کا معاوضہ دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جبکہ تم اس کا معاوضہ جو مقرر کیا ہو وہ بھلائی کے ساتھ ادا کر دو۔ اس کے بعد عدت وفات کا مسئلہ ہے، شوہر فوت ہو جائے تو عورت کیا کیسے عدت گزارے۔ فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر و 10، فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑیں تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، تو جب وہ اپنی اختتامی مدت کو پہنچ جائیں تو اے والیو تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو وہ عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کر لیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہاں پر عدت وفات کا تذکرہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو عدت کتنی ہے۔ تو اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ شوہر فوت ہوا تو عورت جو ہے وہ حمل سے ہے، اگر حمل ہے تو پھر عدت بنتی ہے بچے کی پیدائش تک۔ اب وہ بچے کی پیدائش 8 مہینے کے بعد ہو تو 8 مہینے عدت بن جائے گی، بچے کی پیدائش جو ہے وہ 2 گھنٹے کے بعد ہو جائے شوہر کے فوت ہونے کے، تو وہ 2 گھنٹے ہی اس کی عدت ہوگی اور اس کی پابندیاں ختم۔ تو اگر عورت حمل سے ہے تو اس کی عدت بچے کی ولادت، اگر حمل نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو عدت وفات ہے وہ ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن۔ تو یہ 130 دن بنتے ہیں، 4 مہینے 10 دن 130 دن بنتے ہیں۔ یہ یوں ہے کہ اگر تو یکم کو شوہر فوت ہوا، یکم کو یا مہینے کی 30 کو فوت ہوا، تو اب ایسی صورت میں تو 4 چاند اور پھر 10 دن، اور اگر وہ یکم اور آخری تاریخ نہیں ہے تو ایسی صورت میں 130 دن کی گنتی پوری کی جائے گی۔ تو فرمایا کہ جب یہ عدت پوری ہو جائے अब उसके बाद औरतें जो अपने मामले में करना चाहें शरीयत के मुताबिक तो उस पे उनको मना ना करो। यदि अब औरत आगे शादी करना चाहती है, इद्दत ख़त्म हो गई, तो अब उसको मना नहीं किया जाए। ये हमारे दीन के कुछ अहकामात में वो हैं कि जो शायद बहुत हद तक यूँ कह लें कि फरामोश से होते जा रहे हैं या हो चुके हैं, कि बीवा की आगे शादी करना ये एक किस्म की गाली समझा जाता है या एक किस्म का ऐसा काम समझा जाता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बात यह है कि सहाबा किराम के ज़माने में, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो यही होता था। वहाँ तो जो बेवा हो जाती थी उनकी आगे शादी होती थी, अगर फिर बेवा हो जाती थी फिर आगे शादी हो जाती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो अजवाज मुतहरात हैं, इनमें सिर्फ हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अनहा थी कि जिनकी पहले कोई शादी नहीं हुई थी। लेकिन हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अनहा के अलावा जितनी अजवाज मुतहरात हैं, ये सारी की सारी वो थी कि जिनके पहले निकाह हुए थे, और वहाँ से जो है ना वो बीवगी के बाद ही नबी पाक अलैहिस्सलाम के निकाह में आए। तो ये जो हमारे यहाँ यानी कि गैर मुस्लिमों के साथ रह रह कर एक कॉन्सेप्ट बन गया कि भाई औरत की दूसरी शादी कर ही नहीं सकते बीवगी के बाद, तो ये गलत है। बहुत सारी जगहों पर इसकी ज़रूरत होती है, बहुत सी जगहों पर दूसरी शादी ना करने में फसादात ही फसादात होते हैं, फितने होते हैं, जिसको हर अक्लमंद बंदा समझता है। तो ऐसी जो गलत रस्में और गलत तरीके राइज हो चुके हैं उनके ऊपर गौर करना चाहिए, और औरतों पे जुल्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद फरमाया, वला जुनाह अलैकुम फी मा अरदतुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकननतुम फी अनफुसिकुम, علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم। और तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं जो इशारे किनाए से तुम औरतों को निकाह का पैगाम दो या अपने दिल में छुपा रखो। अल्लाह को मालूम है कि अब तुम उनका तज़किरा करोगे, लेकिन उनसे खुफिया वादा ना कर रखो, मगर ये कि शरीयत के मुताबिक कोई बात कह लो। और अक़द निकाह को पुख्ता ना करना जब तक इद्दत का लिखा हुआ हुक्म अपनी मुद्दत को पहुंच ना जाए। और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिल की बात जानता है, तो उससे डरो, और जान लो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला हिल्म वाला है। ये मसला जो है, ये मसला है बीवा औरतों के बारे में जिनके शोहर फौत हो गए। औरत इद्दत में है, तो अब दौराने इद्दत औरत से निकाह करना तो हराम है। दौराने इद्दत औरत से निकाह करना हराम है, जो इसे हलाल जाने वो काफिर है, और जो निकाह करे तो वो हराम और कतई हराम कतई और गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। तो ये तो है इद्दत में निकाह करना, ये वो है जो आगे फरमाया वला ताजिमु उकदतन निकाह, निकाह की गिरा पक्की ना करो यानी निकाह ना करो। दूसरी बात ये है कि क्या इद्दत के दौरान औरत से निकाह की बात की जा सकती है, निकाह का पैगाम देना या उससे वादा करना कि उससे निकाह किया जाएगा? तो फरमाया कि इशारे किनाए से बात करने की इजाजत है। इशारे किनाए से यह है कि मिसाल के तौर पे उससे यह कहा जाता है कि मैं भी किसी जो है वो नेक सीरत नेक सूरत और फलां कबीले की कोई औरत हो तो मैं उसकी तलाश में हूं, मैं उससे निकाह करना चाहता हूं। तो अब वो औरत वैसी उन सिफात वाली है और उस कबीले की है, तो ऐसी बात कि जिसे इशारतन उसे पता चल जाए कि ये शख्स जो है उससे निकाह करने में रगबत रखता है, तो इशारे किनाए से इद्दत वफात में निकाह की बात की जा सकती है। या दिल में रख ले, दिल में रखने में तो खैर वैसी हरज नहीं है, वो तो वाजे है कि उसकी इजाजत है। तो ये है, लेकिन ये सरी अल्फाज में बात करना यानी कि कोई शख्स किसी बेवा औरत से ये कहे जो इद्दत जिसकी चल रही है कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, ये हराम है। सरी अल्फाज हराम है, इशारे किनाए से बात की जा सकती है। और ये जो अहकाम हैं ये हैं सारे इद्दत वफात के बारे में, जो फौत होने वाली की इद्दत है उसमें। अगर किसी औरत को तलाक हुई है और इद्दत तलाक गुजर रही है, वहां पर ये इशारे किनाए से भी बात नहीं की जाएगी। इद्दत तलाक में इशारे किनाए से भी बात करना हराम है। तो ये मसाइल है जो इन आयतों में बयान हुए। اس کے بعد مہر کا مسئلہ بیان فرمایا، فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو یا کوئی مہر نہ مقرر کر لیا ہو تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں، اور ان کو ایک جوڑا برتنے کو دو، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے، شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے. مسئلہ یوں ہے کہ مہر جو ہے اس کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں، میں چند صورتوں کا عرض کر دیتا ہوں. اگلی آیت کے اندر بھی پھر مزید اسی کا تذکرہ آ رہا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے بیوی کے ساتھ نکاح میں ایک مہر مقرر کیا کہ مثال کے طور پر 50,000 روپیہ مہر ہے. اب اس کے بعد بیوی کی رخصتی ہوئی، میاں بیوی کے جو ہے نا وہ خلوت ہوئی، تعلقات قائم ہوئی، اس کے بعد طلاق ہو گئی، جیسے نارملی ہوتی ہے، کہ ایسا نہیں ہوتا نکاح کے بعد ہی طلاق ہو جائے، کچھ عرصہ گزرتا ہے پھر طلاق ہو جاتی ہے. تو کچھ عرصہ ضروری نہیں، مراد یہ کہ قربت ہوئی ہو یا خلوت صحیحہ ہوئی ہو. ایسی صورت میں تو جتنا مہر طے ہوا اتنا ہی دینا ہوگا، 50,000 روپے مہر تھا تو 50,000 ہی دینا ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ 50,000 روپے مہر مقرر ہوا لیکن عورت کی رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی. جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لڑکا ہے کسی دوسرے ملک میں، لڑکی یہاں پر ہے، اور ان کا نکاح تو ہو گیا اور مہر بھی مقرر ہو گیا مثلا 50,000 روپے، اب فون پہ باتیں کرتے کرتے لڑائی ہوگی، طلاق بھی ہو گئی. تو اب ایسی صورت میں کہ جب عورت کی رخصتی سے پہلے یہ طلاق ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں آدھا مہر دینا ہوتا ہے، 50,000 ہے تو 25,000 روپے مہر دینا پڑے گا. تیسری صورت وہ ہے جو یہاں بیان کی گئی، وہ یہ ہے کہ نکاح ہوا، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، یعنی کہ خلوت سے قربت سے پہلے طلاق ہو گئی، اور مہر جو ہے وہ مقرر ہی نہیں کیا تھا کہ کتنا مہر. تو جو مہر مقرر نہیں کیا اور اب خلوت سے پہلے، رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی، تو ایسی صورت میں شوہر پر بیوی کو ایک جوڑا دینا واجب ہے، ایک سوٹ دینا واجب ہے، شلوار قمیض دوپٹہ، یہ ایک جوڑا دینا اس پر واجب ہے. تو یہ مسئلہ ہے جو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جو مالدار ہے اس پر جوڑا ہے اس کی طاقت کے مطابق، اور جو تنگ دست ہے اس پر جوڑا ہے اس کی طاقت کے مطابق. تو مالدار پہ ذرا مہنگے قسم کا اچھے والا ہو گیا، اور غریب آدمی پہ تھوڑا سا ہلکے والا ہو گیا، تو یہ دونوں کے اعتبار سے فرق ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا ہوا ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم نے ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر دیا ہے، تو جتنا تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دیں یا وہ شوہر زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اور اے مردوں، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کی زیادہ نزدیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. یہ وہ مسئلہ جو میں نے دوسرا مسئلہ عرض کیا تھا کہ مہر مقرر ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہوگی تو آدھا مہر دینا پڑے گا، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ آدھا مہر واجب ہے، مگر اگر بیوی آدھے سے بھی زیادہ معاف کرنا چاہے، یعنی 25,000 بنتا ہے وہ بولے جی 25 بھی نہیں لیتی، یا 25 میں سے بھی صرف 5,000 لیتی ہوں، تو یہ اس کی مرضی. اور چاہے تو شوہر زیادہ کر دیں، کہ شوہر بولے کہ ٹھیک ہے بنتا تو 25,000 ہے لیکن میں 50,000 ہی پورا دیتا ہوں، تو فرمایا کہ یہ بھی اجازت ہے، بیوی معاف کر دے یا شوہر بڑھا دے. اور فرمایا کہ اے شوہرو، تمہارا زیادہ بڑھا دینا یہ جو ہے یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یعنی یہاں پر بھی جو عورت کی فیور ہے اس کے اعتبار سے فرمایا کہ عورت کی معافی کی بات جو ہے اس طرف نہیں، بلکہ اے شوہرو تم زیادہ دے دو، کہ زیادہ دینے کے اندر کوئی اتنا بڑا حرج نہیں ہوگا لیکن عورتوں کی خیر خواہی ہو جائے گی. तो फरमाया कि तुम्हारा बढ़ा के देना जो है ये तकवे के ज़्यादा करीब है। अब देखें बात क्या है कि तलाक हो चुकी है, और तलाक के बाद क्या होता है जो हम अपने माशरे पे देखें तो माशरे में तो वही होता है कि ये तो दुश्मनी की ऐसी जड़ बुनियाद होती है कि पूछे कुछ ना। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ लोगों जिसमें ये मियाँ बीवी शामिल हैं, फरमाया कि एक दूसरे पर एहसान करना ना भूलो। यानी तलाक भी हो जाए, तलाक जो है वो बैठे बिठाए नहीं होती, झगड़ों के बाद ही होती है आमतौर पर, लेकिन फरमाया कि उस सूरत में भी एक दूसरे पे एहसान करना ना भूलना, मेहरबानी करना, जिंदगियां बर्बाद करने की कसम खा के ना खड़े हो जाना कि नहीं जनाब अब तो हुए, अब तो मैं बता दूंगा मैं हूं कौन, और लड़की वाले अपनी कसम खा के बैठे हो हम तो इसको जीने नहीं देंगे, हम तो इसको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएंगे, हम तो इसको बदनाम कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जैसे हमारे यहाँ होता है। तो अल्लाह ताला किसी पे वक्त ना लाए ऐसा, लेकिन आए तो फिर आयत मुबारका याद रखें कि अल्लाह ताला ने ऐसी सूरत में भी एक दूसरे से हुस्न सुलूक का हुक्म दिया है। इसके बाद फरमाया हाफिज़ु अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वकूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तमाम नमाजों की पाबंदी करो और खुसूसन दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के हुजूर अदब से खड़े हुआ करो। ये सारे मसले काफ़ी देर से चल रहे थे, तलाक के, इद्दत के, निकाह के ये मसाइल चल रहे थे। अब उनके साथ साथ अल्लाह ताला ने दरमियान में नमाज का जिक्र कर दिया। क्यों? इसलिए ताकि बंदाए मोमिन ये बात याद रखे कि ये दुनिया के सारे मामलात अपनी जगह, लेकिन जो रब को याद करना है वो अपनी जगह। तो ऐसा ना हो कि इन चीज़ों के अंदर बंदा पढ़ के उसको ना नमाज का होश, ना खुदा को याद करने का होश, ना कोई उसको जो है सजदे की तौफीक। तो फरमाया नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की। दरमियानी नमाज से मुराद है असर की नमाज। तो असर की नमाज जो है ये सारी नमाजों में अफजल नमाज है, इसे सलात वस्ता कुरान मजीद में फरमाया, और फरमाया कि अल्लाह के हुजूर अदब से खड़े हो। तो खुदा की बारगाह में जब नमाज में खड़े हों तो हमारे पूरे वजूद से अदब और ताज़ीम नज़र आनी चाहिए, पाँव के दरमियान जो फासला है वो मोतदिल सा होना चाहिए, ऐसे ना खड़ा हो कि जैसे देखने वाला बोलेगा ये कैसे खड़ा, और इसी तरीके से हाथ बांध के, सर झुका के, दिल भी झुका हुआ हो, तो इस अंदाज में अदब के साथ अल्लाह की बारगाह में खड़े हों। इसके बाद नमाज की एक सूरत बयान फरमाई है, हालत खौफ के अंदर कैसे नमाज पढ़ी जाए। फरमाया इन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबाना फ़ैदा अमीन तुम फ़ज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून। फिर अगर तुम खौफ की हालत में हो तो पैदल या सवार जैसे मुमकिन हो नमाज पढ़ लो, फिर जब हालत इत्मीनान में हो जाओ तो अल्लाह को याद करो जैसा उसने तुम्हें सिखाया है। उसने तुम्हें सिखाया है जो तुम ना जानते थे। तो यह है हालत खौफ की नमाज। हालत खौफ ये है कि मिसाल के तौर पे मुसलमान फौज है और वो मैदान जंग की तरफ जा रही है, और अब वहाँ पर जो है कोई ऐसी अफरा तफरी की सूरत है कि तसल्ली से सफ़े बांध के यूँ नमाज पढ़ नहीं सकेंगे। तो फिर फरमाया कि नमाज नहीं छोड़नी, दुश्मन का खौफ है, दुश्मन के हमला आवर होने का खौफ है, ऐसी सूरत में फरमाया कि इसी तरह दरिंदे का खौफ है कि भाई कोई अगर यहाँ रुके तो दरिंदा निकल आएगा जंगल से। तो फरमाया कि नमाज नहीं छोड़नी, अब पैदल चलते चलते नमाज पढ़ लो, और सवारी पे हो तो सवारी में ही नमाज पढ़ लो। अब उसमें वो सजदा तो नहीं इस तरीके से होगा, इशारे से नमाज पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अल्लाह ताला की तालीम देखें कि पैदल चलते हुए नमाज आम जिंदगी के अंदर आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई भी हालत हो नमाज पढ़नी है। तो चलते चलते भी यही है कि आप चलते चलते अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर दी, उसी में सूरह फातिहा पढ़ रहे, उसी में सूरत पढ़ रहे, उसी में थोड़ा सा सर झुका के रुकू कर दिया, उसमें थोड़ा सर झुका के सजदा कर दिया, पूरी की पूरी फौज भी जा रही हो सारी की सारी नमाज पढ़ेगी। तो फरमाया हालत इत्मीनान हो तो फिर जैसे बाकायदा तरीका है उसके मुताबिक नमाज पढ़ो। तो इससे जो नमाज की अजमत और अहमियत है बहुत ज़्यादा गौर करने की है कि हालत खौफ, जान का खौफ, माल लुटने का खौफ, ऐसी हालत में भी चलते हुए सवारी पे बैठे हर हालत में नमाज पढ़ने का हुक्म है। तो कितनी बदनसीबी हो कि बंदा आराम से बैठा हुआ है, घर में है, ऑफिस में है, दोस्तों की मजलिस में है, या शॉप पे बैठा हुआ है, अजान सुनता है, नमाज का वक्त है, जाने में कोई हर्ज भी नहीं होगा, कोई डर खौफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो नमाज से महरूम रहे। तो जो नमाज से महरूम रहा गोया खुदा ने उसे अपनी बारगाह में आने की इजाज़त ही नहीं थी, उसे तौफीक ही नहीं थी। लेकिन उस तौफीक का एक सिरा हमारे हाथ में है कि हम कोशिश करें तो जा सकते हैं। तो लिहाजा ऐसे महरूम नहीं बनना चाहिए कि दीदा दानिश्ता आसानी है फिर भी नमाज छोड़ दे। मुश्किल है तब भी छोड़ने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हमें तो अक्सर आसानी ही होती है। इसके बाद दोबारा इद्दत का एक मसला है, लेकिन जो मसला बयान किया गया ये हुक्म जो है ये मनसूख हो गया था। आयत क्या है, फरमाए वल्लदीना युतवफ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजं वसीयतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौलि गैरा इख़राज फ़इन ख़रजना फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अलन फ़ी अन्फुसिहिन मिन मारूफ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और जो तुम में मर जाएं और बीवियां छोड़ें, वो अपनी औरतों के लिए उन्हें घरों से निकाले बगैर साल भर तक का खर्चा देने की वसीयत कर जाएं, फिर अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर इस मामले में कोई गिरफ्त नहीं जो वो औरतें अपने बारे में शरीयत के मुताबिक करें, और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। ये जो हुक्म है ये अभी जैसे थोड़ी देर पहले ही आयत गुजरी है उसमें था कि जिसका शौहर फौत हो जाए तो उसकी इद्दत है 4 महीने 10 दिन, हमल से है तो बच्चे की विलादत। यहाँ जो है ये पहले हुक्म था कि जिस औरत का शौहर फौत हो जाए तो शौहर पे ये लाजिम है कि वो अपनी बीवी के लिए वसीयत करके जाए कि मेरे मरने के बाद 1 साल तक का खर्चा मेरी बीवी को दिया जाए, 1 साल का खर्चा मेरी बीवी को दिया जाए और 1 साल तक इसे इसी घर में रहने दिया जाए। तो 1 साल तक औरत घर में रहेगी, उसे खर्चा दिया जाएगा और ये उसका एक ड्यू राइट था, ये लाजिम था कि शौहर इसकी वसीयत करे। लेकिन फरमाया कि हाँ अगर वो खुद कुछ कर लें कि वो खर्चा ना लें, उनके पास दूसरी गुंजाइश हो या उनको ना लेना चाहें, तो फरमाया कि ये उनकी मर्जी कि वो ना लें। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2 हुक्म हुए, एक तो ये है कि औरत की जो इद्दत है उसका फरमा दिया 4 महीने 10 दिन, दूसरी बात ये हुई कि औरत के लिए वसीयत नहीं बल्कि विरासत बना दी गई। वसीयत तो ये थी 1 साल का खर्चा, विरासत ये है कि औरत का बकायदा शौहर के माल में हिस्सा है। अगर औलाद है शौहर की तो 1/8, और औलाद अगर नहीं है तो 1/4, तो ये औरत को बकायदा विरासत में हिस्सेदार बना दिया। तो यूं फिर जो है ये जो 1 साल तक का खर्चा देना था ये मनसूख हो गया। इसके बाद फरमाया वलिल मुतल्लकाति मताउन बिल मारूफ हक्कन अलल मुत्तकीन, और तलाक वाली औरतों के लिए भी शरई दस्तूर के मुताबिक खर्चा है, ये परहेजगारों पर वाजिब है। तलाक वालियों के लिए खर्चा है, यह है दौराने इद्दत का खर्चा, जब तक औरत इद्दत में होती है उसका नान नफका वाजिब होता है, शौहर पे वाजिब होता है कि इद्दत के दौरान का खर्चा वो बीवी को दे, इसी तरह इद्दत के दौरान जो रिहाइश है वो भी बीवी को दे, तो ये शौहर पे वाजिब होता है, यहाँ पर उसका बयान है। फरमाए कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून, अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझो। तो ये बड़े वाजे वाजे अंदाज के अंदर यहाँ पर सारे आकाम बयान कर दिए गए। इसके बाद अब बिल्कुल नया तस्किरा जो है वो शुरू हो रहा है, ये यहाँ तक थे अहकाम, अब अहकाम के बाद अब हैं बनी इसराइल के वाकयात। लेकिन ये जो बनी इसराइल के वाकयात हैं ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाले नहीं हैं, बल्कि बनी इसराइल में जो और नबी थे हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, अब ये उनके वाकयात शुरू होते हैं। फरमाए अलम तरा इलल लदीन खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون। ए हबीब, क्या तुमने उन लोगों को ना देखा था जो मौत के डर से हजारों की तादाद में अपने घरों से निकले, तो अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा फरमा दिया, बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। ये एक बड़ा दिलचस्प वाकया है बनी इसराइल की तारीख का। हुआ ये कि एक मर्तबा बनी इसराइल में ताऊन का मरस फैल गया। ताऊन के मरस में होता यह है कि मौतें बहुत ज़्यादा होती हैं, हज़ारों लाखों लोग चंद दिनों के अंदर मर जाते हैं। इतना बड़ा जो है ना वो इसका इम्पैक्ट होता है। अच्छा, अब हुक्मे शरीयत ये है कि जिस इलाके में ताउन फैले, बाहर का बंदा वहां ना जाए और वहां का बंदा बाहर ना जाए, ये ताउन के अंदर हुक्मे शरई है। ये पहले भी ये था, हमारी शरीयत के अंदर भी ये। तो अब हुआ ये कि हजारों की तादाद में लोग जो है वो अपने इलाके को छोड़ गए, जब ये ताउन फैला हुआ यहां से निकलो। अब जो वो यहां से निकले तो अब इन्होंने हुक्मे खुदा की मुखालफत की, तो अल्लाह ताला ने इन पे हुक्म जारी कर दिया, मर जाओ। तो ये कुछ 70,000 बंदा जो है ये मर गया, 70,000 बंदा बगैर ताउन के ये वैसे ही मर गया कि मौत से भागते हो, खुदा तो कहीं भी मौत दे सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि हजरत हिजकील अलैहि सलातो वसलाम इनके नबी थे, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला इनको जिंदा फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने हजरत हिजकील अलैहि सलातो वसलाम की दुआ से इन 70,000 को दोबारा जिंदा कर दिया। तो ये वाकया है जो यहां पर बयान किया गया। तो फरमाया कि बेशक अल्लाह का लोगों पे बड़ा फजल है, लेकिन अक्सर लोग खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। तो ये जैसे लोग थे, तो इनके ऊपर भी यही वाकया गुजरा कि इन्होंने भी खुदा का शुक्र अदा नहीं किया। तो खुदा की नेमतें और फजल जो है वो बहुत है, लेकिन बंदे खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। हमें अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए। इसके बाद फरमाया वकातिलू फी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम, और अल्लाह की राह में लड़ो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। ये जो आयत मुबारक है, ऊपर के वाक्य के बाद राह खुदा में जिहाद की बात की गई, ये बताना ये मकसूद है कि वो लोग जो मौत के डर से अपने इलाके से भागे थे, मौत के डर से जो ताऊन से भागे थे, तो मौत उनको वहां भी आ गई। तो राह खुदा में अगर जिहाद करोगे, अगर अल्लाह की राह में जान की कुर्बानी देने निकलोगे, तो हो सकता है कि तुम्हें शहादत मिल जाए, लेकिन अगर नहीं निकलोगे तो घरों के अंदर रह के मौत से बच नहीं जाओगे। ऐसा थोड़ी है कि बंदा जो है वो अगर राह खुदा में जाके जान कुर्बान ना करे तो घर में उसको मौत ही नहीं आती, मौत तो सबको आनी। तो ये कुरान मजीद में यहां पर भी, इसके अलावा भी कई जगह पे इससे ज्यादा सराहत के साथ समझाया गया कि तुम अगर ये समझते हो कि खुदा की राह में जाके जान कुर्बान नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी बढ़ जाएगी, हमें मौत नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। मौत तो तुम्हें आएगी, भले अपने घरों के अंदर हो, भले तुम मजबूत किलों के अंदर छुप जाओ, मौत तो तुम्हें वहां भी आ जाएगी। तो लिहाजा मौत के डर से राह खुदा में जिहाद से जाने से ना बचो ना एराज करो। अब जान की कुर्बानी के बाद माल की कुर्बानी का तज़किरा है। फरमाया मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युदाअिफ़हू लहू अदआफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैही तुरजऊन। फरमाया है कोई जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे तो अल्लाह उसके लिए उस कर्ज को बहुत गुना बढ़ा दे, और अल्लाह तंगी देता है और वसअत देता है, और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। सुभान अल्लाह, यहां अल्लाह ताला अपनी राह में खर्च करने को क्या फरमा रहा है कि मेरी राह में खर्च करना ऐसे है कि जैसे मुझे कर्ज देना, खुदा को कर्ज देना। अगर जुमले की नौइयत पे गौर करें तो इतना हैवी किस्म का जुमला है ये कि इंसान के बस में नहीं है कि वो ऐसी बात कर सके। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फजल से, अपनी रहमत से, अपने करम से बंदे की बंदा परवरी करते हुए फरमाया कि है कोई जो अल्लाह को कर्ज दे। गोया खुदा का दिया हुआ माल, खुदा का पैदा किया हुआ माल, खुदा की दी हुई तौफीक से अगर बंदा अल्लाह की राह में देता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं इसे कर्ज के तौर पे लूंगा। और कर्ज का मतलब क्या होता है कि कर्ज लेके वापस किया जाता है। कर्ज तो इसलिए होता है ना कि कर्ज लेके वापस किया जाता है। तो रब फरमाता है कि रब तुम्हें ये कर्ज वापस करेगा, आखिरत के अंदर इसका सिला मिलेगा, और वो भी एक आध मरतबा का नहीं, फरमाया कई गुना बढ़ा के देगा, कई गुना बढ़ा के। कर्ज में तो जितना दिया उतना वापस मिलता है, लेकिन अल्लाह ताला जो अजर देगा वो ऐसा नहीं है कि 100 रुपया खर्च किया तो अल्लाह ताला 100 रुपये का ही सवाब देगा, नहीं, अल्लाह ताला सवाब देगा 10,000 का, 70,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, पता नहीं कितना बढ़ा के दे दे। तो ये कुरान मजीद की आयतें कि तुम खुदा को कर्ज दो, खुदा कई गुना बढ़ा के तुम्हें अता फरमा देगा। और बहुत मरतबा तो अल्लाह ताला दुनिया के अंदर ही अता फरमा देता है, दुनिया में भी देता है, आखिरत में भी देगा। अल्लाह ताला हमें اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو قرآن کے ہر حکم پہ عمل کرنے والے ہوں۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
قرآن قرآن قرآن۔